आज की बात।
श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं, आज कल भारत में चुनाव चल रहा है और इस अवसर पर चुनाव आयोग पर बहुत से पक्ष सवाल उठा रहे हैं, तो आज की बात में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारत में विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है, जबकि दूसरे लोगों के साथ ऐसा नहीं है। तो इस बारे में सबसे पहले उस घटना का उल्लेख किया जाता है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जाँच की वजह से एक IAS अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया था, जबकि भारत के प्रधानमंत्री पर कई बार आपत्ति के बाद भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। सबसे पहले NDTV के रविश कुमार की समीक्षा सुने।
क्या ऐसा कोई कानून है कि चुनाव की ड्यूटी पर तैनात अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ी चेक नहीं कर सकता, उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी नहीं ले सकता? अगर ऐसा कोई कानून है तो चुनाव आयोग को, पब्लिक को भी इसके बारे में बताना चाहिए। और अगर किसी अधिकारी ने हेलीकॉप्टर की तलाशी ले ली तो क्या यह इस हद तक का अपराध है कि उस अधिकारी को निलंबित कर दिया जाए? कर्नाटक कार्डर के IAS अफसर मोहम्मद मोहसिन ने प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर की तलाशी ले ली, उनके हेलीकॉप्टर की, और अचानक हुई इस चेकिंग के कारण प्रधानमंत्री के उड़ने में 15 मिनट की देरी हो गई। चुनाव आयोग ने मोहम्मद मोहसिन को निलंबित कर दिया और कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG की सुरक्षा घेरे में रहने वाले लोगों की जांच की प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया। मोहम्मद मोहसिन 1996 बैच के अधिकारी हैं कर्नाटक काडर के, और इस आदेश में लिखा है कि मोहम्मद मोहसिन ने SPG के संबंध में चुनाव आयोग के 22 मार्च 2019 और 10 अप्रैल 2014 के आदेश के अनुरूप कार्य नहीं किया। विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए लिखा है कि चुनाव आयोग इस अधिकारी को निलंबित करता है। तो क्या मोहम्मद मोहसिन को अपनी ड्यूटी करने की सजा दी गई? क्या ये सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने की हिमाकत की? अरविंद गुणाशेखर ने उन तमाम आदेश पत्रों को पढ़ा और NDTV.com पर भी लिखा है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसे चुनाव आयोग ने दिया है, नंबर बताए हैं, और जब पढ़ा तो पता चला कि कहीं नहीं लिखा है कि SPG सुरक्षा होने के नाते प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की तलाशी नहीं ली जा सकेगी। अरविंद बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जिस 10 अप्रैल 2014 के आदेश का हवाला दे रहा है उसमें लिखा ही नहीं है कि SPG सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के हेलीकॉप्टर की जांच नहीं होगी।
निलंबित होने वाले अफसर मोहम्मद मोहसिन ने भी NDTV के साथ एक वार्ता में अपना पक्ष रखा।
मुझे जहां तक मैंने लोगों से बात सुनी है, कलेक्टर से बात सुनी है, कि वहां पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था उसने जो है जो भी विजुअल इंस्पेक्शन जो मतलब नजर से जाके उसने सिर्फ हेलीकॉप्टर के अंदर झांका है, मुझे पता चली है। और उसमें शायद उसने गालबन ये स्टेटमेंट दिया है, मेरे पास उस पेपर नहीं है, लेकिन वो जैसा मैंने सुना है कि उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि इस इंस्पेक्शन का ऑर्डर मैंने ऑब्जर्वर साहब ने दिया था, जनरल ऑब्जर्वर ने दिया था, जो कि सरासर गलत है। मैंने ऐसा कोई किसी को इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर नहीं दिया था, वो बात गलत है। तो जो भी मैंने काम किया है वो ECI के गाइडलाइन में लेटर एंड स्प्रिट में किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के गलत रिपोर्ट की वजह से मुझे सस्पेंड किया गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
अब भाजपा के एक प्रत्याशी का भाषण सुने, भाजपा प्रमुख अमित शाह की उपस्थिति में।
बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन करके विष बबन कर रहे हैं। RJD के उम्मीदवार दरभंगा में कहते हैं, वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा। बेगूसराय में भी कुछ लोग आकर के बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन करके विष बबन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो 3 हाथ का जगह भी चाहिए, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगी।
ये तो भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन लोगों को तो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री पर भी आपत्ति है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का एक सवाल और समीक्षक नीरजा चौधरी का जवाब सुने।
भारत के दो बड़े नेता, हम नाम लेकर पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों लोगों के बारे में चुनाव आयोग में अनगिनत शिकायतें हैं। विपक्ष के लोगों द्वारा, नागरिकों द्वारा भी बहुत सारी शिकायतें दर्ज हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्वयं माना है कि हाँ शिकायतें आई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। किसी भी तरह का अल्टीमेटम भी नहीं दिया गया है, चेतावनी भी नहीं दी गई है। कैसे देखती हैं इस पहलू को आप, खासकर प्रधानमंत्री जी की पाटन की रैली और इसके पहले लातूर की रैली में उन्होंने सेना के पराक्रम या सेना के शौर्य को लेकर जिस तरह से चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की, उसके मद्देनजर?
देखिए, दोनों चीज़ों पे प्रधानमंत्री की जो रैलीज हुई हैं, सेना के नौजवान जिन्होंने अपनी जान दी उनके नाम पे वोट मांगना पार्टी के लिए, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को एड्रेस कर रहे हैं या कहीं बाहर जाके कर रहे हैं या NRI का समूह है किसी देश में, तो उसमें एक गौरव प्रकट कर रहे हैं कि हमारी सेना के नौजवान प्रधानमंत्री होने के नाते वो कर रहे हैं। भाजपा के नेता होने के नाते चुनावी रैली में जब वो करते हैं तो उसका अलग संदर्भ होता है, उसका अलग मायना होता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कई चीज़ें उन्होंने कही हैं और अपोजिशन के लोगों ने कंप्लेंट भी किया है, जैसे कि सांप सूंघ गया है चुनाव आयोग को, मतलब क्या हो रहा है। हमने देखिए ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स कई चीज़ें देखी हैं, लेकिन इस बार और ये भी एक चीज़ मैं कहूँगी, इलेक्शन कमीशन में जो बैठता है ना, सरकार अपॉइंट करती है लेकिन उस कुर्सी पे बैठता है तो 56 इंच की छाती हो जाती है। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराना इतने सालों से हुआ है, TN सेशन भी तो सरकारी थे ना, पर वहाँ बैठे तो कड़े निर्णय लिए और लोग जो उन्होंने फॉलो किया है। तो आज क्या हो गया है इलेक्शन कमीशन को, बहुत ही निराशाजनक है। हाल में कुछ निर्णय उन्होंने लिए ऐसा लगता है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, पर और भी करने की जरूरत है।
चुनाव आयोग की स्वायत्तता के बारे में उर्मिलेश जी के एक सवाल का जवाब देते हुए प्रोफेसर आदित्य निगम कहते हैं,
अब देखिए TN सेशन तो नियम तो अलग नहीं थे, लेकिन TN सेशन का नाम जब आप याद करते हैं तो एक ऐसे चुनाव आयोग की याद आती है आपको। बेशक उनके बहुत सारे गलत फहमियाँ थी ये सब लेके, जो इन्होंने उसको पूरी तरह से करने की कोशिश की इलेक्शन आई कार्ड, आज भी मतलब वो
उपयोग में,
हाँ वो पूरी तरह से उस तरह उसका वो होता नहीं है, जिनके यहाँ घर में कागज़ रख के 5 साल बाद निकालने की वही नहीं है, वो कहाँ करेंगे। बहरहाल, लेकिन TN सेशन का जब आप नाम याद करते हैं तो जिस इलेक्शन कमीशन की तस्वीर आपके सामने उभरती है वो आज, और कल आप ये बदल भी दीजिए तरीका, तो भी अगर आप वो कल्चर नहीं तैयार करेंगे जहाँ आपके इंस्टीट्यूशंस मुस्तैदी से खड़े हो सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देखिए आप अमेरिका में, वो इंस्टीट्यूशंस का वो कल्चर तो बन पाया है ना, कि जहाँ आप इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट कौन आ गया है इसके बूते पे नहीं निर्भर करता है, तो वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सिरे से गायब है। अब EVM को लेके जो बहस 5 साल से चल रही है, किसी भी फेयर इलेक्शन कमीशन के लिए क्या मुख्य क्राइटेरियन क्या होना चाहिए, कि भाई लोगों को सिर्फ चुनाव फ्री एंड फेयर हों ये काफ़ी नहीं है, लोग उससे संतुष्ट हों,
अगर उसको महसूस भी हो,
हाँ कैसा ये महसूस भी हो, अगर कहीं भी ये गुंजाइश रखती है कि इसकी इसके चलते इलेक्शन प्रोसेस घेरे शक के घेरे में आ रहा है, तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन उसको हटा के रख देगा। जहाँ खास तौर से दुनिया भर में आपके पास अब काफ़ी एविडेंस है कि दुनिया भर में ये हो रहा है और लोग वापस मशीन से बैलेट पेपर की तरफ लौट रहे हैं, तो वहीं नियत की खोट तो वहीं दिखाई दे गई हमें। और बाकी मतलब जहां तक प्रधानमंत्री और अमित शाह का सवाल है, क्या बताएं आप, मतलब ये एक पूरा गुजरात का चुनाव मुशर्रफ के खिलाफ लड़ चुके हैं, आपको याद होगा वो पूरा चुनाव का मुद्दा था मियां मुशर्रफ। और पिछले चुनाव में इन्होंने शमशान और कब्रिस्तान को खींच लिया अंदर, और जैसे जैसे पता नहीं आपको याद है या नहीं, वो 2014 के हर फेज के अगले चरण में जाते ही वो सांप्रदायिक तेवर जो है और तीखा हो जाता था, इस बार वो शुरू से ही हो गया है।
प्रोफेसर आदित्य निगम, बहरहाल इन हालात में किसी भी देश में समाज के अंदर असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। मतदान एक अत्यंत कीमती अमानत है और सत्ता पक्ष और विपक्ष और चुनाव आयोग तथा मीडिया सबको हर उस काम से दूर रहना चाहिए जिससे इस प्रक्रिया के बारे में संदेह पैदा हो। अलबत्ता इस दौरान पद और जिम्मेदारी के हिसाब से दायित्व भी हल्के और भारी होते हैं।